علينا فيه पढ़ने का स्वभाव हर महीने में, लेकिन इस महीने में कुरान हदीस पढ़ने का स्वभाव बहुत ज्यादा है और क्योंकि इस महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया गया है और गोया नुज़ूल का सिलसिला जारी है। इंसानी अजहान पर कुरान मजीद को समझने के लिए इंसानी जहनों पर जो नुज़ूल का वक्त है वो माह मुबारक रमज़ान है। इस महीने में बंदों के फहम पर कुरान नाजिल होता है, उनके कलूब पर कुरान नाजिल होता है और बंदों के मुखातब है होते हैं। किसी मुफस्सिर ने खुद कहा है कि अगर इंसान या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम में या अय्युहल लज़ीना आमनू की लज़्ज़त को महसूस कर ले तो रोजे के खत्म हो गए। अल्लाह सुभान व तआला बंदों से जो खिताब कर रहा है, उन्होंने मुखातब किया है कि ऐ ईमान वालो, हम आप पर इसी तरह से रोजों को वाजिब किया है जिस तरह से तेरे पहले वालों गोया जो है जिस तरह से छोटे बच्चे को जो इंजेक्शन दिया देता है डॉक्टर, तो कहता है हम तुम्ही को इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं बल्कि तुमसे पहले वाले जो बच्चे गुजरे हैं उनको भी हम इसी तरह का इंजेक्शन लगाए ताकि उसको इसके दर्द का एहसास ना हो। तो वैसे ही इस प्यार से, इस मोहब्बत से जान आ रहा है, वरना अल्लाह डांट के भी बात कह सकता था कि तुम पर जरूरी है कि तुम जो है तुम्हारे मुबारे रमजान के रोजे रखो, लेकिन मेहमानों को इस तरह से नहीं कहा जाता। ये दर्द खुद परवरदिगार आलम दे रहा है क्योंकि इस महीने में हम अल्लाह के मेहमान है और मेहमानों के साथ जो है अल्लाह सुभान व तआला अपने मेहमानों की कदर करता है। तो जब अल्लाह अपने मेहमानों की कदर करता है तो अल्लाह के बंदों को भी चाहिए कि वो इस महीने की कदर करें और इस महीने की अजमत को पहचाने। और जो लोग रोजा नहीं रहते उनको भी चाहिए कि माह मुबारक रमजान का एहतराम करें। ऐसा नहीं कि जो मुसाफिर हैं, जिनके ऊपर से रोजे साबित हैं, जो बीमार हैं, मरीज हैं, वो रोजे नहीं रह सकते तो माह मुबारक रमजान उनके लिए नहीं आया, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं रह सकते, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो जो है मरीज हैं, ठीक है, लेकिन माह मुबारक रमजान उनके लिए भी है, सबके लिए है माह रमजान। आज की गुफ्तगू का अनुमान है कुरान मजीद किताब इज्जत किताब बरतरी है। कुरान मजीद अजीज किताब है, कुरान मजीद जिस तरह से मजीद है ना, इसी तरह से कुरान मजीद अजीम जिस तरह से है उसी तरह से कुरान मजीद अजीज भी है। कुरान मजीद जो है बरतर किताब है, कुरान मजीद जो है तमाम हत्ता न सिर्फ तमाम कुतुब पर अजमत रखती है बल्कि कुतुब आसमानी पर भी फजीलत रखती है। कोई सहीफा है आसमानी ऐसा नहीं है और कोई आसमानी किताब ऐसी नहीं है जिस पर कुरान सैतरा न रखती हो और कुरान जो है महमला न रखती हो। उन तमाम कुतुब पर कुरान मजीद की फजीलत साबित है। जो कुछ भी दौरे तो जरूर में है वो कुरान मजीद में मौजूद है। जो कुछ भी इंजील और ज़बूर में मौजूद है, जो कुछ भी सुहूफ आसमानी में, सुहूफ आदम और सुहूफ नूह में, उन सब का लुबा और उन सब का निचोड़ कुरान मजीद में, क्योंकि ये इंसान की ये वो किताब है कि जो कयामत तक के इंसानों के लिए, जिस तरह खुद बशर तमाम कायनात का निचोड़ है, जमात की खूबियां, नबात की खूबियां, हैवानात की खूबियां सिमट कर जिस तरह से वजूद इंसानी में आई है कि इंसान तमाम मखलूकात में बढ़तर मखलूकात कहलाया, तो कोई मखलूक कायनात में ऐसी नहीं जिसकी खूबी इंसान के अंदर न पाई जाती है, जिसकी खूबियां इंसान के जमात का जुमूद, नबात का नमो, हैवान की हिस्सियत, चांद और सूरज की रोशनी वजूद इंसानी में सब कुछ आप मुलाहिजा कर सकते हैं। समंदर की गहराई भी है और जो है फजा की वसतें भी है इंसान के वजूद के अंदर। तो इसी तरह से कुरान मजीद जिसका मौजू इंसान है, कुरान मजीद तमाम अफकार का मजमुआ है, तमाम نظریات کا خلاصہ ہے، فکر بشر کا التقا ہے قرآن مجید پر. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی کا جلوہ لی ہوئی ہے اپنے اندر، اسماء الہیہ کا جلوہ جو ہے، یعنی الہی تجلیات کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن مجید میں دیکھنا ہے نا. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز ہے تو قرآن بھی عزیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے تو قرآن مجید بھی علیم ہے. یعنی قرآن مجید میں جلوائے اسماء الہیہ ہے، تجلیات اسماء الہیہ کا مجموعہ ہے. قرآن کو جس طرح سے پیش کرنا ہے نہیں پیش کیا گیا، عظمت قرآن کو لوگوں نے جو ہے بیان نہیں کیا. اگر قرآن کی عظمت معلوم ہو جائے، جس طرح سے روایات میں کہ اگر انسان کو علم کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے کا ختم کر کے علم حاصل کرے، جس طرح سے دولت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو خزانے پہ پیسے جھپٹتے ہیں ایک دوسرے کا خون بہا کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دولت کی اہمیت معلوم ہے، اور جن لوگوں کو دولت کی اہمیت نہیں معلوم ہے وہ خزانے کے اوپر سے گزر سکتے ہیں. تو دولت و اقتدار کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ تمہارا اقتدار میری جوتی کے برابر ہے. ان کی بات تھوڑی ہے کہ وہ دولت و اقتدار کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اقتدار کے پیچھے مر مٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اقتدار ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اب اگر کسی کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، عظمت علم کا احساس ہو جائے کہ علم کس میراث اور کس خزانے کا نام ہے، تو لوگ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور علم حاصل کریں. تو جو شان اصل علم جو ہے نا، وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. حقیقت علم قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید علم کا ایسا سرچشمہ ہے جو کبھی سوکھتا ہی نہیں. تو جو شان قرآن مجید کتاب عزت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ کلمت اللہ ہی الاولیاء، کہ کلمہ اللہ یہی جو ہے بلند ترین کلمہ ہے. اس کلمے سے بلند کلمہ، خدا سے بلند کوئی کلمہ نہیں ہے. سب سے بڑا کلمہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ سب سے بڑا ہے، ذات خدا سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یعنی اگر بڑائی ہے تو صرف اللہ کے لیے، کمال کا اگر کوئی مصداق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کمال مطلق اس کی ذات ہے. واللہ عزیز حکیم، سورہ توبہ کی 40ویں آیت، اللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہی غالب ہے اور صاحب حکمت ہے. واللہ، اور اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے. عزیز عزیز کا مطلب جو ہے نا، آپ جتنے صاحب مرتبہ اس کا عموماً ترجمہ ہوتا ہے، اور صاحب بلندی اور غالب آنے والا. اور اگر آپ فرمانے صاحب کے ترجمہ دیکھے تو واللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ جو ہے وہ غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے. لیکن اصل عزیز کا جو معنی ہے، جو لغت سے کرے گئے، وہ یہ ہے کہ شکست ناپذیر. عزیز یعنی شکست ناپذیر، شکست قبول کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ جو ہے نا غالب آنے والا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ شکست قبول نہیں کرتا، یعنی کوئی اس پر جو ہے غلبہ نہیں پا سکتا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی اس کے اوپر جو ہے حاوی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر نفوذ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو احاطے میں نہیں لے سکتا ہے، کوئی اسے جو ہے کوئی اس کے اوپر کمن نہیں ڈال سکتا ہے، یعنی کوئی اس میں نفوذ نہیں کر سکتا ہے. وہ عزیز نے وہ سب دیوار کے جس کے اندر جو ہے کیلا نہ کھودا جا سکتا ہو، وہ دیوار بھی عزیز کہلاتی ہے. یہ عزت اسی سے ہے کہ عزت دار ہے، یعنی جو ہے کسی کا جو ہے نا किसी का जो है कोई उन्हें महफूज नहीं कर सकता, कोई उन्हें छुपा नहीं कर सकता, उनके अंदर कोई दाखिल नहीं होता, कोई जो है गलत अफकार, गलत नजरिया, बातिल नजरिया उन पे महफूज नहीं कर सकते। यानी उनकी उनकी उनके सीने की दीवार इतनी मजबूत है कि इस दीवार के अंदर कोई कील नहीं पहुंच सकता, कि ये सिफ्त है, सख्त है, नफूस पजीर नहीं है, यानी इतनी नरम नहीं है कि कोई चीज उसके अंदर नफूस कर सके, कोई चीज उसमें दाखिल हो सके, कोई रोजन नहीं है कि उसमें दाखिल हो सके। तो इसी तरीके से जो है बातिल नफूस पैदा ना कर सकता हो, बातिल अफकार, बातिल नजरियात, दुश्मन हावी नहीं हो सकता है। अगर दुश्मन हावी हो जाए तो समझिए वो जलील। दुश्मन अगर दाखिल हो रहा है तो वो जलील है। वो कौम अजीज कौम है जिस कौम को कोई झुका ना सकता हो, उस पर कोई नफूज ना कर सकता हो। ये जो है इज्जतदार मुल्क है। अभी क्या कहा जाता है कि ईरान जो है ना बहुत कवी है, बहुत कवी मुल्क है, बहुत जो है इज्जतदार मुल्क है, यानी जो है अजीज है, शिकस्त नापजीर है, शिकस्त कबूल करने वाला नहीं है, और कोई कौम इसको जलील नहीं कर सकती, यानी कोई कौम उसमें नफूज नहीं कर सकती, कोई उन्हें छुपा नहीं सकता है, कोई उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, यानी दीवारें इतनी मजबूत है कि एक कील के अंदर नहीं जा सकती है। तो ईरान की दीवारें इतनी मजबूत हो चुकी है अब कि कोई मुनाफिकों का हलवा वहां पर काम नहीं कर सकता। आज वो ईरान देखिए तो क्या कहेंगे यार, इस मुल्क में जो चाहे वो दाखिल हो रहा है, कोई दीवार जो है में कोई दीवार मजबूत नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग जो है अजीज नहीं रहे, उनकी इज्जत पामाल हो रही है, इज्जत नैलाम हो रही है, इज्जत का जनाजा निकल रहा है, मुल्क की इज्जत का जनाजा निकल, जो चाहे आके रोंगटा चला जा रहा है, यानी नफूस कर रहे हैं, दूसरी कौमें नफूस कर रहे हैं, यानी इज्जतदार कौम नहीं है, इज्जतदार मुल्क नहीं है, सभी मुल्क नहीं है, गालिब आने वाला नहीं है, बल्कि मगलूब हो रहा है, लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं, दुश्मन अंदर दाखिल हो रहा है, चारों तरफ से अंदर दाखिल हो रहा है, कोई दीवार जो है ना इतनी मजबूत नहीं है कि जो दुश्मन को रोक सके, बगैर वीजा के लोग दाखिल हो गए रहा है, बगैर जो है ना कोई उसकी सरहदें खुली हुई है, कहीं पर कोई दीवार नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई मुल्क ऐसा हो जिसकी कोई सरहद ही ना हो, जिसकी सरहद में तो कोई बगैर वीजा के बगैर जो है कोई ये उसके जो है दाखिल हो रहा है, इसका मतलब यही कि वो अजीज नहीं रहा। तो वल्लाहु अजीज उन हकीम, कि अल्लाह अजीज है, कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता है, कोई शैतान कोई मलून अल्लाह की जात पर मुमिन नफूज नहीं कर सकता है, जात इलाहिया को झुका नहीं सकता है, कोई ताकत इतनी नहीं है कि वो अल्लाह को झुका सके, अल्लाह कमजोर नहीं है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि शैतान के पास पूरी ताकत है, अल्लाह के पास क्या रखना है, तुम अल्लाह अल्लाह क्या करते हो, अल्लाह अल्लाह करने से क्या होता है कि अल्लाह आगे आपको बचाएगा, दुनिया में अल्लाह की नहीं चलती है, नऊज़ बिल्लाह यहां तक का। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह को अजीज नहीं समझते, आप अल्लाह को इज्जतदार नहीं समझते, कि अल्लाह क्या कर सकता है, नऊज़ बिल्लाह आप अल्लाह अल्लाह क्या कर रहे हैं, अल्लाह पे क्या को क्या पुकार रहे हैं, क्या अल्लाह आगे आपको यहां बचाएगा, तो कहते अल्लाह आगे आपको बचाएगा, अब तो सारी कुदरत हमारे पास है, वो तो बंदे के पास अल्लाह पहुंचाएगा, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो किसी की हुकूमत नहीं, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद से अल्लाह की हुकूमत शुरू होगी, यहाँ कोई पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता है, ये इख्तियार जो बंदों के पास है ना वो भी अल्लाह का दिया हुआ है, इख्तियार भी खुद उनका अपना जाती नहीं है, यानी इख्तियार जो हासिल किया है वो अपना नहीं है, ये जिस ये जो सोचते हैं ना ये सोच की ताकत भी अल्लाह की दी हुई है, ये जो प्लान करते हैं ना वो किस ताकत की बुनियाद पे करते हो? ताकत अल्लाह की दी हुई है,
तौफीक का भी शुक्रिया अदा करने की जरूरत है।
हाँ, तौफीक भी अल्लाह की तरफ से होती है और हर चीज अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से। وللله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم سورہ نحل کی 60ویں آیت، اس سے پہلے جو سنایا آپ کو سورہ توبہ کی 40ویں آیت تھی، یہ سورہ نحل کی 60ویں آیت ہے جس میں ہے وللہ المثل اللہ ہی کے لیے ہے مثل اعلی، وهو العزيز الحكيم کہ وہ عزیز الحکیم ہے۔ پھر وہی بات کہ اللہ عزیز ہے، اللہ عزت والا ہے، اللہ شکست ناپذیر ہے، اللہ جو ہے مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ کھل کر اب ایک آیت آ رہی ہے سورہ منافقون کی کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا، کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اس کے رسول کے ہاں ہے، وللمؤمنین جمیعا، اور ساری کی ساری عزت اللہ رسول اور اس کے
صاحبان ایمان کے
مومنین کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ بنی مصطلق کا ایک گروپ جو نبی کریم کو زیادہ ستانے لگا تو نبی کریم نے جنگ کا ارادہ کیا، تو عبداللہ ابن عبی بھی اس معرکے میں شریف ہو گیا، اور جب تقسیم کی بات آئی تو حضور نے کہا کہ پہلے جو ہے غریبوں کو اور کمزور لوگوں کو جو ہے یہ تقسیم کیا جائے، تو عبداللہ ابن عبی نے کہا کہ عبداللہ نے چلنے دو، مدینہ لوٹنے دو، ان کو مدینے سے باہر نکال دیں۔ یعنی پیارا نبی کریم کوئی مدینے سے باہر نکال دیں، جسارت دیں، ظالم کی جسارت دیکھیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد نبی کریم کو باہر نکال، جب یہ بات خود عبداللہ ابن عبی کا بیٹا تو خود اس کا نام جو عبداللہ ہے تو وہ سنتا ہے، تو حضور سے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے ارشاد فرمائے تو میں اپنے باپ کا قتل کروں کہ آپ کی جسارت مجھے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور میں اس چیز کو بھی کیسے برداشت کروں گا کہ کوئی اور جو ہے قتل کرے اور میں دیکھتا ہوں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ تو حضور نے روک دیا، حضور نے منع کر دیا کہ تم کیا نبی کریم پر ہاتھ ڈالو گے اور کیا نبی کریم کو تم نعوذ باللہ جو ہے انہیں باہر نکالنے کی بات کر رہے ہو، یعنی یہ مدینے سے باہر نکالنا ایک طرح کی ذلت ہے نا، تو آپ تو یہ کیا چاہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ نبی کریم کو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کے لیے ساری عزت ہے، تم کیا نبی کو ذلیل کرو گے؟ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے۔
نعرہ حیدری،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عزت ہے، اللہ کی ذات شکست ناپذیر ہے، اس کا رسول کی ذات شکست ناپذیر ہے، اور مومنین شکست ناپذیر۔ حقیقت میں مومنین کے لیے عزت ہے کہ مومنین پر ان کی ذات میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، وہ کسی کے افکار تلے دبتے نہیں ہیں اور کسی کے غلط فکر کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں، اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں پر نفوذ کر سکے، جو مسلمانوں کو ذلیل کر سکے، مسلمان پہ بھی ذلیل نہیں ہوتا، جو مومن ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مومن نہ ستم کرتا ہے نہ ستم کو قبول کرتا ہے، کیونکہ ستم کرنا جس طرح سے غلط ہے اسی طرح سے ستم پذیری بھی غلط ہے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح سے کسی کی توہین کرنا غلط ہے، توہین برداشت کرنا بھی غلط ہے، ظلم کرنا بھی غلط ہے، ظلم کا سہنا بھی غلط ہے، ستم करना भी गलत है, सितम को कबूल करना भी गलत है। ना किसी को जलील करो और ना खुद जलील हो, यानी कोई आपको झुकाए तो उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, झुकना सिर्फ अल्लाह की बारगाह में है। तो मोमिन के लिए इज्जत है, मोमिन को कोई ताकत जलील कर ही नहीं सकती, इसलिए कि मोमिन किसी के सहतरे को कबूल करता ही नहीं है और किसी के सामने झुकता, कोई उसकी जात में नफूज नहीं कर सकता, है ना, कोई बातें अफकार उसकी जात में नफूज नहीं, यानी वो अजीज है, वो इज्जतदार है। राम किए हुए लोगों को जलील कहा जाता है, जो राम शुदा है वो जलील है, जो नफूस को कबूल कर रहे हैं वो जलील है, जो नफूस अपने अंदर नहीं पैदा करने दे रहे हैं वो लोग अजीज हैं, वो लोग इज्जतदार हैं। तो इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। ना अल्लाह किसी के सामने झुकता है, न रसूल किसी के सामने झुकते हैं, ना मोमिनीन किसी के सामने, न अल्लाह पर किसी जात का गलबा हो सकता है, न किसी चीज का नफूज अल्लाह की जात में हो सकता है, न रसूल की न मोमिनीन। ये शीशा पिलाई की दीवार है कि इसके अंदर नफूज मुमकिन नहीं है, इसके अंदर इनको झुकाना मुमकिन नहीं है, इनको शिकस्त देना मुमकिन नहीं है, इनको मगलूब करना मुमकिन नहीं है, इन पर गालिब आना मुमकिन। فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولا تهنوا سستی اختیار مت کرو وتدعوا الى السلم اور جو ہے سلامتی کی دعوت دو وانتم الاعلون اور تم جو ہے غالب ہو والله معكم اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم مومن ہو تو تم غالب آنے والے ہو تم بالا دست ہو اللہ نے مومنین کو پیدائشی طور کے اوپر بالا دست بنایا ہے یعنی ایمان ان کو پیدائشی حق دیتا ہے ایمان انہیں یہ کہتا ہے کہ اگر مومن ہو تو تم بالا دست ہو کبھی آپ دیکھیے مسلمان کبھی زیر نہیں ہوا ہے مسلمان کا ہاتھ ہمیشہ بالا رہا ہے کفار قریش کی تحدیدات کا شکار مسلمان نہیں کتنا وہ نفوذ کرنا چاہیں لیکن ان کا نفوذ مسلمانوں کے اندر نہیں ہو سکا وہ انہیں ذلیل نہیں کر سکے خادم بھی جب اسلام لے آیا تو اس کے اوپر بھی غلبہ نہیں پا سکے بلال کے سینے میں پتھر رکھ دیا گرم پتھر سینے پر رکھ دیا گرم ریتی پر سینے پہ ڈال دیا لیکن جو ہے بلال پر نفوذ نہیں ہو سکا کسی فکر کا نفوذ نہیں ہو سکا اور جب اللہ کی ذات کو مان لیا اور ایمان لے آیا تو کسی کے سامنے بلال نہیں جھکا ابو ذر غفاری کو کوئی جھکا سکا نہ دولت زیر کر سکی نہ اقتدار زیر کر سکی نہ جاؤ حشم سے مرو ہوئے نہ سلطنتوں سے مرو ہوئے نہ حاکمان وقت سے مرو ہوئے ابو ذر غفاری نے رمضان میں جان دی تھی صحرا میں جس طرح سے دریا میں کنارا نہیں ملتا اسی طرح سے صحرا میں بھی جو ہے نا صحرا میں بھی جو ہے راستہ نہیں ملتا ایسے صحرا میں لے جا کے چھوڑ دیا گیا جہاں دور دور تک کوئی جو ہے راستہ نہیں صحرا کی گویا میں صحرا کے سمندر میں چھوڑ دیا گیا تھا بیل دریا پر جس طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے کنارا نہ پید ہوتا ہے وہاں پر اس گرم لک دک صحراؤں کے حوالے کر دیا گیا ابو ذر غفاری لیکن ابو ذر چھپے نہیں شکست ناپذیر شخصیت شکست قبول نہیں کرنے والی شخصیت یہ عزت دار لوگ ہیں عزیز لوگ ہیں جو ذلت برداشت نہیں کرتے اور پھر سورہ آل عمران کی 139ویں آیت جو بہت ہی مشہور و معروف آیت ہیں, بہت ہی مشہور آیت ہیں, بہت اہم آیت ہیں, اور کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. بہت ہی صاف وہ آیت ہے, بہت ہی واضح آیت ہے, مبین ہے, واضح ہے, اور ایک پیام بھی ہوئی ہے, ایک پیغام بھی ہوئی ہے, ایک جو ہے مسیج اس کے اندر ہے, اور ایک طاقت اس آیت کے اندر ہے, ایک حوصلہ افزائی اس آیت کے اندر ہے, ایک وعدہ الہی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور وہ یہ کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, خبردار مسلمانوں کی سستی کا شکار مت ہو جاؤ, وَلَا تَحْزَنُوا اور غمگین مت ہو جاؤ, ہمت مت ہارو, اپنا حوصلہ مت ہارو, غمگین مت ہو جاؤ, نڈھال مت ہو جاؤ, ہتھیار مت ڈالو, شکست قبول مت کرو, سر نہ جھکاؤ. وانتم الاعلام ان کنتم مؤمنین, کہ تم بالا دست ہو اگر تم مؤمن ہو. اگر تم مومن ہو تو پھر تم بالا دست ہو, اگر بالا دست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کنتم مومنین کی ہم فہرست میں نہیں آئے. شرط یہ ہے کہ تم مومنین کی فہرست میں آ جاؤ تو پھر تم شکست نہیں کھا سکتے. اس شرط کے ساتھ انتم الاعلون, تم ہی بالا دست ہو, تمہارا ہی اختیار ہے, تم سے بڑا کوئی نہیں ہے, تم پر کوئی حامی نہیں ہو سکتا کیونکہ تم عزیز ہو, تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا ہے, عزت تمہارے ہی لیے, تم ذلیل نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے, تمہارے ساتھ رسول ہے, تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو تم ہی بالا دست ہو. انتم پہلے یہ کہا کہ انتم العالم, تم ہی بالا دست ہو, مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ قرآن دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے, سیاتی زمان, ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا, نبی کریم فرمایا کرتے تھے سیاتی زمان, میری امت پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا القرآن الا رسمه. ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری امت پر کہ قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہے گا, اسلام کا صرف نام باقی رہے گا. لا يبقى من الاسلام الا اسمه سوائے نام کے, ولا القرآن الا رسمه سوائے قرآن کے رسم الخط. جب ایسا ہو جائے تو مومن بھی نام کے ہو جائے, مسلمان بھی نام کے ہو جائے. جب مومن ہی نہیں رہیں گے تو بالا دست کہاں سے رہیں گے؟ جب حقیقت میں مسلمان ہی نہیں رہیں گے, نام کے مسلمان رہیں گے. جب نام کے مسلمان رہیں گے, حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے, نام مسلمانوں جیسا ہوگا, صورت مسلمانوں جیسی ہوگی, داڑھی مسلمانوں جیسی ہوگی, شکل و صورت مسلمانوں جیسی رہے گی, مگر مسلمان نہیں رہیں گے. صفوف مسلمین میں کھڑے رہیں گے, سر تو جھکے گا مگر دل نہیں جھکے گا, بھوکے تو رہیں گے لیکن اطاعت الہی نہیں کریں گے. دیکھنے میں تو معلوم ہوگا کہ حج کر رہے ہیں, جسم چکر کاٹے گا لیکن روح اپنی جگہ پہ کھڑی کھڑی رہے گی, کہ روح طواف نہیں کر رہی ہے اور روح مرکز ہے, اللہ کی ذات کو مرکز بنا کے اس کے محور پہ نہیں گھوم رہی ہے, بلکہ روح تو اکڑ کے پھیری ہوئی ہے لیکن انسان کا جسم ہے جو گھوم رہا ہے. تو کتنے حاجی ایسے ہیں جو قسمت کا چکر کاٹ رہے ہیں, کتنے روزے دار ایسے ہیں ان کو پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا, کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں کہ وہ قرآن ہو یا لانو کہ قرآن ان کا لعنت بھیج رہا ہے. کتنے ایسے قاری ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیج رہا ہے, کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جو صرف قیام و قعود کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ حالت نماز میں نہیں ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو مسلمان خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے, इसकी पहचान ये है कि ये हकीकत में मुसलमान है या नहीं है, ये पहचाना कैसे जाए। मोमिनीन की बस्ती है या नहीं है, इसे कैसे पहचाना जाए। अगर आसानी से मोमिनीन की बस्ती खाली कराई जा रही है, कोई उनमें नुफूस कर रहा है, कोई उन्हें जो है बाहर करने की सलाहियत रखता है, तो इसका मतलब यह है कि ये जलील हो रहे हैं। जो यानी बस्तियां अगर खाली हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जलील हो रहे हैं। जो जलील होते हैं वो मुसलमान नहीं होते। जिस पर किसी का नुफूस हो जाता है फिर वो जो है मुसलमान नहीं रहते। मोमिन मर जाता है लेकिन जो है किसी को नुफूस करने नहीं देता। यही कोशिश हो रही, लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन में मुसलमान रहते हैं, उनको मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है कि कोई तुम्हें जलील ना करे। तुम मोमिन हो, तुम मुसलमान हो, अगर तुम मोमिन बन जाओगे तो इसराइल तुम पर गालिब नहीं आएगा, तुम इसराइल पर गालिब आ जाओगे। अंतुल आदाव नहीं कुन तुम मोमिनीन, कि तुम बालादस्त हो अगर तुम मोमिनीन में से हो। तुम मुसलमानों को अपने ईमान का जायजा लेना है कि हम मोमिन है या नहीं है, हम मोमिनों के शहर में रहते हैं या नहीं रहते। मदीने में किसी में जुरत नहीं थी कि जो मदीने वालों को बाहर कर सके, मदीने में नुफूस कर सके। मदीना नाकाबिले तस्खीर बन गया था। यहां तक के जो है बड़ी बड़ी कुफ्र शिर्क की ताकतें जो मक्के के सराने कुफ्र थे वो भी मदीने में नुफूस न कर सके। पैगंबर इस्लाम ने ऐसा अजीज बना दिया था मुसलमानों को, इतना इज्जतदार बना दिया था मुसलमानों को, इतनी इज्जत मुसलमानों को दे दी थी कि कोई ताकत उनके अंदर नुफूस नहीं कर सकती थी। बल्कि उन्होंने मक्के पे नुफूस किया और उन्होंने मक्के के सराने कुफ्र को जलील कर दिया कि उनके सामने फिराने असल जलील हो गए। उनके सामने जो है मक्के का अबू सुफियान जो है सर को निवड़ा दिया और सराने कुफ्र उनके सामने झुके। क्यों? पैगंबर इस्लाम ने मक्के में नुफूस किया। पैगंबर इस्लाम ने जो है ना फतेह मक्का किया, लेकिन मदीने मदीने को कोई तस्दीक ना कर सका। मदीने को अल्लाह के रसूल ने इतना मजबूत किला बना दिया था मुसलमानों का। तो मुसलमान अगर अपनी सरहदों को कमजोर कर ले, कोई उनके अंदर नुफूस पैदा कर ले, तो फिर वो अजीज नहीं रहे। आज न मुसलमान उलमा अजीज है, न मुसलमान मिल्लत अजीज है, न मुसलमान कौम अजीज है, न मिल्लत मुस्लिमा अजीज रही। इसलिए कि कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जो इज्जतदार कहलाए, जो मोमिनों की बस्ती कहलाए, कि जिसके अंदर जिसकी सरहदें इतनी कड़ी हो कि दुश्मन उनमें नफूस ना कर सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि मिस्र की सरहदें खुली हुई है दुश्मनों के लिए, शाम की सरहदें खुली हुई है दुश्मनों के लिए, ईरान की सरजमीन खुली हुई है दुश्मनों के लिए। तो क्या आप इन सरजमीनों को इज्जतदार सरजमीन कह सकते है, इज्जतदार मुल्क कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि इसमें मोमिनीन रहते हैं? मोमिन कभी किसी का गलबा कबूल नहीं करता। आज कितने मुजाकिरात हो रहे हैं लेकिन कोई मुजाकिरा ऐसा नहीं है कि जिसपे दुश्मन की पॉलिसी ईरान के ऊपर गलबा करे। ईरान ने ये बता दिया कि हमारा मुल्क इज्जतदार मुल्क है, हम न रशिया के सामने झुकेंगे, न अमरीका के सामने झुकेंगे, न इसराइल के सामने झुकेंगे। ये ताकत किसने दी? इमाम खुमैनी ने कहा था कि अमरीका ही गलती नहीं तमानत पर, कि अमेरिका कोई भी किस्म की जसारत नहीं कर सकता, कोई जुर्अत नहीं कर सकता, उसकी हैबत निकाल दिया। वरना तो है एक ऐसा फुग्गा था कि जिसको जो है ना लोग उस फुग्गे को जो है ना फुग्गा नहीं समझ रहे थे, गुब्बारे को गुब्बारा नहीं समझ रहे थे। इमाम खुमैनी ने कहा कि असल में ये लोग जलील हैं, तुम जलील नहीं हो, अमरीका जलील है, रशिया जलील है, और जो है ना ये इसराइल जलील है। क्यों? ये तो फुग्गा है जिसके अंदर सुई भी चुभ सकती है, तो सुई भी चुभ सकती है। कितने कंजर्व हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और जब एक सुई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सुई भी जो है चुभती है तो इनकी हवा निकल जाती है। आप देखिए इसराइल जलील हुआ कि नहीं हुआ? हिजबुल्ला के चंद जवानों ने इसराइल को जलील कर दिया, इसराइल में नफूस कर दिया और इसराइल जलील हो गया। आज इस वक्त जो है इसराइल गलबा नहीं पा सक रहा है फिलिस्तीन में। अब आप देखिए आज खबरें देखिए कि जो तीसरा इंतफाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने वाला है, अब ये आखिरी इंतफाज़ा रहेगा फिलिस्तीन। अब इतनी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि इस वक्त जो है इसराइल के शहर खाली हो चुके हैं, आपको इतला दें। उसके अंदर जो है इसराइल की दीवारें इस वक्त जो है गजा की बमबारियों से टूट चुकी है। पहले क्या था, सिर्फ मार खाते थे, मारते नहीं थे, और ये लोग 100 मारे, इसराइल 100 मारे, लेकिन अगर इनकी अगर एक भी मार देना तो इसराइल की बेइज्जती है। इज्जत तो गई ना, इज्जत तो गई, नफूस तो हो गया ना। जब नफूस हो जाता है तो इज्जत नहीं रही। इनकी इज्जत अभी तक बरकरार थी कि कोई इनके अंदर नफूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन आवारा वतन फिलिस्तीनियों में आज इतनी ताकत हो गई कि वो भी जवाब दे रहे हैं। ये जवाब इसराइल को महंगा पड़ रहा है। इनके 100 मरते हैं मुसलमानों के तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका अगर एक मरता है तो पूरी दुनिया में बावैला मचा दिया जाता है, इसलिए कि फिर उनका कोई दूसरा पैदा नहीं होता है ना। उनका अगर एक मरता है तो दूसरा पैदा नहीं होता है ना, कोई यहूदी बन सकता है ना कोई फिर उसका कोई जगह पर आ सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक पैगाम है कुरान मजीद का, एक जो है पैगाम है, एक आफाकी पैगाम है, और 1400 वर्ष की तारीख इस बात की गवाही दे रही है कि जब कभी मुसलमानों ने ईमान का दामन थामा है, इस्लाम का दामन थामा है, जब कभी मुसलमानों ने मुसलमान ईमान पर कायम रहे हैं, कोई उनपे नफूज नहीं कर सकता है, लेकिन जब से इन मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा है, ये उनके अंदर की जो ताकत है ना इस्लाम की, वो खत्म हो गई अंदर से। ईमान की जो ताकत है, जो रूह है ईमान है, वो अगर सख्त हो जाती है तो किसी का भी गलबा इनके अंदर हो सकता है के अंदर। ये मुसलमानों के पास है क्या इस्लाम के सिवा? मोमिनीन के अंदर क्या है, कौन सी ताकत है? ईमान की ताकत। अगर ये ईमान ही नहीं रहेगा तो मुसलमान खोखला हो जाएगा, मोमिनीन खोखले हो जाएंगे, फिर कोई भी चीज जो है एक गुब्बारा बन जाएंगे मुसलमान। ये इसीलिए कुरान कह रहा है कि तुम लोग कमजोर मत हो जाओ, सुस्त मत हो जाओ। तुम जो है तुम ये मत समझो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है अगर तुम्हारे पास इस्लाम है। अगर तुम्हारे पास ईमान है तो सब कुछ है तुम्हारे पास, ये मत समझो कि हमारे पास कुछ नहीं। ये समझो कि उनके पास सिर्फ हथियार है और क्या है, उनके पास सिर्फ दौलत है और क्या है, उनके पास है ना सिर्फ हथियारों की ताकत है और क्या है, उनके पास दौलत है उनके पास और क्या है, उनके पास और कुछ नहीं है। आप भी समझिए कि हमारे पास सब कुछ है, हथियार नहीं हुए तो क्या हुआ? हमारे पास सब कुछ है लेकिन दौलत नहीं हुई तो क्या हुआ? ये अगर मुसलमान समझ लेगा, जिस दिन ये चीज मुसलमान समझ लेगा, जिस दिन मोमिन इस ताकत को समझ लेगा कि हमारे साथ खुदा है, तो उसके पास कुछ भी कम नहीं है। 100 आमद 90 पेशे मास। अगर 100 आपके पास है तो 90 भी है, 80 भी है, 70 भी है, 60 भी है, 50 भी है। अगर आपके पास 100 नहीं है तो समझो ना 90 है ना 80 है, कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि 100 नहीं। खुदा अगर आपके पास है तो कुछ कमी नहीं है आपके पास। मोमिन हो तो बेतेज भी लड़ता है। क्यों? वो मैदान में उतरता है किस ताकत पर? अल्लाह की ताकत। को कहता है कि मेरे पास सिर्फ हथियार नहीं है और क्या नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। और दुश्मन ये जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय हथियार के, इसीलिए जब मैदान में मोमिन बगैर हथियार के आता है और काफिर हथियार के साथ आता है तो हथियार जलील हो जाते हैं, लश्कर जलील हो जाता है, मैदान छोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि दुश्मन को भी इस बात का पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय हथियार के, जब हथियार मेरे हाथ में नहीं रहेगा तो मुझे कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है लड़ने के। मोमिन कहता है नहीं, मेरे पास सब कुछ है, अंतुल आलम तुम गलबा पाने वाले, अगर तुम मोमिन अमीरुल मोमिनीन ने किस तरह से अमर इब्न अब्दुल्लाह को जेर किया, किस ताकत की दुनिया कौन सी ताकत थी? ईमान की ताकत। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो मारिफत नाशिनास है, कहते अमीरुल मोमिनीन के बाद जिस्म की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पहलवान को जेर कर दिया, इतने बाजुओं में ताकत थी, जिस्मानी ताकत नहीं थी अजीजों। अमीरुल मोमिनीन की पिंडिया कमजोर थी। अमीरुल मोमिनीन कहते थे कि देखो मैं कितना लागर हूं, जिस्म के तौर पर लागर थे लेकिन रूह इतनी कवी थी कि उस ईमान की ताकत का मुकाबला दुनिया का कोई पहलवान न कर सका। और दुनिया में जितनी भी ताकत लेकर, जिस्मानी ताकत लेकर चाहे कोई मेहमान आ जाता, वो खैबर का दर नहीं उखाड़ सकता था। खैबर का दर जो उखाड़ा है, ला बकुव्वत जिस्मानिया बल बकुव्वत रहमानिया, कि मैंने मा कलात बाबा खैबर, मैंने नहीं उखाड़ा है बाबा खैबर को बकुव्वत जिस्मानिया बल बकुव्वत रहमानिया। ईमान की ताकत, ये कुल्ले ईमान की ताकत है, ये ईमान की ताकत है। लोगों ने ईमान की ताकत नहीं देखी हमेशा जिस्म को, इसलिए कि सबने आंखों से देखने की कोशिश की है, बातिन से देखने की कोशिश नहीं की है। ईमान अलैहिस्सलाम को समझने की जहमत दोबारा नहीं की है लोगों ने, और उनको भी एक आम पहलवानों की तरह का मुकाबला समझा है। जिस तरह से दो पहलवान लड़ते हैं कि एक पहलवान जीत गया तो एक पहलवान हार गया, अरे ये वो पहलवान है जो हार ही नहीं सकता है, वो पहलवान है जो हार ही नहीं सकता, इसलिए कि ये अजीज है, ये शिकस्त नापजीर है, ये अल्लाह रसूल की ताकत अपने साथ किए हुए है, ये इज्जतदार है, ये मोमिनीन है, सारी इज्जत इनके लिए है, ये मैदान छोड़ के नहीं जाते, ये मैदान छोड़ के नहीं जाते, दूसरे मैदान छोड़ के जलील हो सकते हैं लेकिन ये मैदान छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये अजीज है, ये इज्जतदार है, ये मैदान नहीं छोड़ते। न इनको मदीने से निकाला जा सकता है, न इनको मैदान से हटाया जा सकता है। लाश तो मैदान से जा सकती है लेकिन ये मैदान छोड़ के नहीं जा सकती। ये है, ये वो इज्जतदार लोग हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं وكتاب الله بين ظهوركم ناطق لك لا يعيا، कि ये किताब अल्लाह की किताब वो पुष्ट पना रखती है, वो नातिक है कि जो गूंगी नहीं हो सकती है। नातिक ला يعيا لسانه، जिसकी जबान जो है गूंग नहीं हो सकती है। कुरान बैतुन ला तुहदहु अरकानो، एक ऐसा मकान है कि जिसके अरकान मुनहदिम नहीं हो सकते। कुरान मजीद अजीज किताब है, एक ऐसा मकान है, यानी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कुरान मजीद की तशबीह उस घर से दीजिए जिसके अरकान मुनहदिम नहीं हो सकते, जिसकी दीवारें टूट नहीं सकती, जिसके पाए मुतजलजल नहीं हो सकते, ऐसा कभी मकान के जिसके अरकान और जिसके पाए मुतजलजल नहीं हो सकते, ऐसा मकान है कुरान, ऐसी किताब है कुरान, ऐसा चराग है कुरान जो कभी बुझ नहीं सकता, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, कोई बिल्डोजर इस मकान को मुनहदिम नहीं कर सकता। कुरान एक ऐसा मकान है ना, बैतुन एक ऐसा बैत है कुरान, ला तुम दो अरकान, जिसके अरकान को जिसके बुनियादों को कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई गिरा नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा मकान। इसीलिए जो इस मकान के अंदर आते हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। जो कुरान मजीद का सहारा लेते हैं कुरान उनको जलील नहीं करता, कुरान उनको अजीज रखता है। ये लोग सिर्फ कारियान कुरान है, तालियान कुरान है ना, ये सिर्फ जो है हाफिजान कुरान है। मुसलमानों में हाफिज मिलेंगे, कारी मिलेंगे, तालियान कुरान मिलेंगे, तजवीद के जो है माहिरीन मिलेंगे, लेकिन कोई उसूल कुरान पर डटा हुआ नहीं मिलेगा। कोई बैत, यानी कुरान एक बैत है, उस बैत की आप तारीफ कर रहे हैं, ये कैसा मकान, उस मकान के अंदर नहीं रह रहे हैं, मकान के बाहर से मकान की तारीफ कर रहे हैं। कश्ती की तारीफ कर रहे हैं कि कितनी अच्छी कश्ती है, लेकिन कश्ती में सवार नहीं हो रहे हैं। नदाम उनको मिलेगी जो कश्ती में सवार होगा, जो बाहर से कश्ती की तारीफ और मजा करेगा उसको कोई फायदा होने वाला नहीं।
नारे सलवा।
इसी तरह अमीरुल मोमिनीन भी है, मसल अहले बैती के मसल सफीनतिन नूह, मन रखा मेरे अहले बैत की मिसाल भी कश्ती है नूह की तरह, जो अहले बैत का हो गया तो उसको नजात मिली। नहीं कि बाहर से ठहर के अमीरुल मोमिनीन की मदद की जा रही, बल्कि अमीरुल मोमिनीन के साथ हो जाएंगे तो नजात मिलने वाली है, और साथ में चलेंगे तो रास्ते में कांटे भी बिछे हुए मिलेंगे, रास्ते में तालाब भी मिलेंगे, रास्ते में दलदल भी मिलेगा, रास्ते में जो है सारी मुश्किल भी मिलेंगी, उन सबको पार करके जाएंगे तो फिर आपके साथ नजात अली के साथ हो जाएगा। बाहर से अली की मदा करना और है, अली के साथ हो जाना और है। अली के साथ होने के लिए फिर शबे हिजरत भी गुजरेगी, बद्र का मैदान भी आएगा, उहद का मैदान भी आएगा, सिद्दीक का मारेगा भी आएगा, इन सारे अली के साथ होना इतना मुश्किल है। वह इस दुन ला तुहज़ू आवानो, कुरान वो अजीज किताब है, वो इज्जतदार किताब है, और इस दिन वो इज्जत है, वो बालातर किताब है, वो बालातर किताब है कुरान, के ला तुहज़ू आवानो, कि जिसके अंसार को, जिसके दोस्तों को, जिसके आवान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, कुरान के आवान को शिकस्त नहीं। अगर आप असहाब कुरान हैं तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। क्या कुरान आज हमारे दरमियान में नहीं है? अगर हम असहाब कुरान हैं, कुरान है ना, तो कुरान का सहाबी बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। आवान बन सकता है नहीं, अंसार बन सकता है नहीं, कुरान का नासिर बन सकता है नहीं। तो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं इस दिन ला तुहज़ू आवानो, कुरान वो बालातर शय है कि जिसके आवान और अंसार जलील नहीं हो सकते, शिकस्त नहीं खा सकते, मग़लूब नहीं हो सकते और मार नहीं खा सकते, उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकते, उनके अफकार पे कोई गालिब नहीं आ सकता। बस एक और हदीस इसी मज़मून की, इमाम अली अलैहि सलाम फरमाते हैं तुम अंज़ल अलैहि किताब नूरन, कि अल्लाह सुभान व तआला ने नाजिल किया है उन पर किताब को नूर बनाकर, नूरन व इज्जन बालातर बनाकर, अजीज बनाकर, इज्जतदार बनाकर कुरान को नाजिल किया है, एक ऐसा इज्जतदार बनाकर कि ला तुहज़ू अंसार हो, कि जिसके अंसार को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। वह हक्कन, एक ऐसा हक है कि ला तुहज़ू आवानो, कि जिसके जो है आवान को, जिसके दोस्तों को जलील नहीं किया जा सकता। कुरान अजीज है जिसके दोस्तों को जलील नहीं किया जा सकता, यानी कुरान और कुरान के असहाब जलील नहीं हो सकते। कुरान झुक नहीं सकता, कुरान को कोई झुका नहीं सकता, तो इतने अफकार, इतने नजरियात, इतनी फलासफी और इतने जो है नजरियात आए, लेकिन कुरान पर कोई नजरिया गालिब नहीं हो सका। साइंस के माहिरीन आके चले गए और तबीयात के माहिरीन आके चले गए, एक नजरिया को कुरान मजीद पे चैलेंज नहीं किया जा सका है, और किसी की फिक्र कुरान पर गलबा नहीं पा सकी है, कि कोई एक आयत को भी जो है पर भी नफूज नहीं किया जा सका है, एक आयत को मौलिद हदफ नहीं बनाया जा सका है, और ना मुफक्किरीन के सामने कुरान झुका, ना साइंसदानों के सामने कुरान झुका, ना जो है किसी के सामने। जब कुरान नहीं झुका तो अंसार कुरान भी नहीं झुके, आवान कुरान भी नहीं झुकेंगे, कुरान के असहाब भी नहीं झुकेंगे। तो आज कुरान भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आज इमाम वक्त भी मौजूद है, तो इमाम मौजूद है तो फिर दरवाजा खुला हुआ है इज्जत का, दरवाजा खुला हुआ है गैरत का, दरवाजा खुला हुआ है कुरान का। कुरान मौजूद है तो अंसारे कुरान भी मौजूद है, और अगर इमाम मौजूद है तो अंसारे इमाम भी मौजूद है, असहाबे इमाम भी मौजूद है। तो आप असहाबे اصحاب امام زمانہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں. آپ جناب کمیر کا مرتبہ بہت بلند ہے تو آپ ان کے مقام پہ ڈاکتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جناب کمیر کی زیارت کے لیے ڈاکتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ آپ جو ہے مالک عشتر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جو ہے اصحاب امام کی امام حسین کے صحابی حبیب ابن مظاہر کی قبر کی زیارت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. یعنی اصحاب حسین کی غربت کا پاس و لحاظ ہے. اسی طرح سے امام زمانہ کے بھی اصحاب موجود ہیں. تو اصحاب امام زمانہ کی بھی آپ کو عزت کرنی ہے, ان کے روزوں کی بھی زیارت کرنے کے لیے جانا ہے. یہ نہیں پوچھنا ہے کہ امام خمینی کون ہے, یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ آیت اللہ عراقی کون ہے, یہ آیت اللہ بھنجت کون ہے. یہ اصحاب امام زمانہ ہے. تو اصحاب امام زمانہ کی بھی جو ہے زیارت گاہیں بنانے کی ضرورت ہے. آپ ان میں جائیے, علی ابن بابوے کا مزار ہے یا نہیں ہے؟ علی ابن بابوے کون ہے؟ سید بھی نہیں ہے, شیخ صدوق کے والد ہیں, شیخ صدوق کے والد ہیں. علی ابن بابوے شیخ, علی ابن بابوے صدوق, یعنی محمد ابن بابوے کے والد, شیخ صدوق کے والد, ان کا مزار ہے, زیارت گاہ ہے, قبر ہے, قریب قبر کے ذریعے ہے. قرآن عاملی تو ابھی ابھی کے شہیدوں میں, ابھی ابھی کے جو ہے علماء میں سے قرآن عاملی کی قبر ہے, قبر کے پاس جو ہے نا جالی لگی ہوئی ہے, اس جالی کو لوگ چھوتے ہیں کہ نہیں چھوتے. جب جو ہے وہ اصحاب کی اہمیت ہے تو یہ اصحاب کی بھی اہمیت ہونی چاہیے, ان کے بھی مزارات بننی چاہیے. اسی طرح سے جو ہے آیت اللہ بہجت کا بھی مزار بننا چاہیے, آیت اللہ پوری کا بھی مزار بننا چاہیے. تمام جو ہے نا مراد یہ کون ہے؟ یہ اصحاب امام زمانہ, یہ انصار قرآن ہے. یہ انصار قرآن, اگر انصار قرآن ہے تو یہ جھک نہیں سکتے, چاہے وہ سیستانی ہو کہ خامنائی ہو. یہ عزیز ہے, یہ عزت دار ہے. دنیا کے سارے لیڈر جھک سکتے ہیں, دنیا کے سارے رہنما جھک سکتے ہیں, دنیا کے سارے جو ہے وہ لیڈر جھک سکتے ہیں, لیکن انصار قرآن اور انصار امام زمانہ نہیں جھک سکتے, اور نہ ان کے ماننے والے جھک سکتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں انصار حسین اور انصار امام زمانہ اور انصار قرآن میں ہمارا شمار ہو. پروردگار ہمارے قلوب کو نور وحی سے, نور ایمان سے, نور محبت اہل بیت سے مزین فرما. پروردگار ہمیں عقل سلیم اور روح سلیم عطا فرما. پروردگار ہمیں معرفت قرآن, معرفت اہل بیت اور معرفت وحی الہی, معرفت ربانی کی توفیق عطا فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں مبارکوں سے ہمیں محروم نہ فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما, بالخصوص سامرا, کاظمین اور کربلا, نجف اور اسی طرح مدینہ اور کعبۃ اللہ کا تحفظ فرما. مسلمانوں کو عزت عطا فرما, پرچم اسلام مسلمین کا سرفراز فرما. پروردگار دشمنان دین, دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما. پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے دنیا اتحاد اور اتفاق محمد فرما, اور منشی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور پہ تعجیل فرما, فرما سورہ خلاف فرما کر حاضرین کے سننے تمام اللہ مسلمین, بالخصوص شہدائے عراق, شہدائے فلسطین, شہدائے شام اور شہدائے لبنان.